SBS हिंदी सेवा के सभी श्रोताओं को नई दिल्ली से मनन कुमार का नमस्कार। पेश हैं भारत के समाचार। ईरान द्वारा इसराइल पर स्कड मिसाइलों और ड्रोन हमलों के बाद भारत ने दोनों देशों में स्थित अपने नागरिकों को स्थानीय सरकार के नियमों का पालन करने और भारतीय दूतावास से संपर्क में रहने की हिदायत दी है। दोनों देशों के बीच युद्ध के खतरे के मद्देनज़र भारत अपने नागरिकों को पहले ही इसराइल, उसके कब्जे वाले फिलिस्तीनी क्षेत्रों और ईरान की यात्रा करने के खिलाफ चेतावनी दे चुका है। साथ ही भारत ने दोनों देशों के साथ अपने हितों का ध्यान रखते हुए क्षेत्र में तनाव कम करने का आह्वान किया है। भारत ईरान से कच्चे तेल का आयात करता है, जबकि इसराइल से उसका सामरिक साजो सामान आता है। आपको बता दें कि ईरान ने 1 अप्रैल को सीरिया की राजधानी दमिश्क में स्थित अपने दूतावास पर हुए हमले के बाद इसराइल के खिलाफ जवाबी कार्रवाई की धमकी दी थी। इस हमले में 2 जनरलों सहित 7 इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड्स मारे गए थे। लोकसभा चुनावों के पहले चरण के मतदान से केवल 5 दिन पहले रविवार को भारतीय जनता पार्टी ने अपना चुनावी घोषणा पत्र जारी किया। इन चुनावों में एक बार फिर भाजपा ने केवल प्रधानमंत्री मोदी को ही अपना मैस्कॉट बनाया है। इस मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने कार्यकर्ताओं के सामने 4 जून के नतीजों के बाद की रणनीति रखी।
भाजपा के संकल्प पत्र पर 4 जून के नतीजे के बाद तुरंत तेजी से काम शुरू हो जाएगा। सरकार पहले ही 100 दिन के एक्शन प्लान पर काम करना प्रारंभ कर दिया है। देश के लोगों का एम्बिशन, देश के 140 करोड़ वासियों का अपना एम्बिशन, ये मोदी का मिशन है।
घोषणा पत्र जारी करने के फौरन बाद प्रधानमंत्री मोदी समेत भाजपा के सभी नेता चुनावी दौरे पर निकल गए। प्रधानमंत्री मोदी ने मध्य प्रदेश के होशंगाबाद की रैली में कांग्रेस के न्याय घोषणा पत्र को निशाने पर लिया।
हताश कांग्रेस ऐसी घोषणाएं कर रही है जो खुद कांग्रेस के नेताओं को ही समझ नहीं आ रहा है। कांग्रेस के शहजादे ने अभी घोषणा की, आप भी सुनकर के हंसोगे। मैं सुनाऊं? जोरों से हंसना पड़ेगा आपको। कांग्रेस के शहजादे ने घोषणा की, और वो वीडियो भी देखने जैसा है, उन्होंने घोषणा की 1 झटके में देश की गरीबी हटा दूंगा। अब बताओ भाई, हंसी आएगी कि नहीं आएगी? आप हैरान हो गए कि नहीं हो गए? ऐसे लोगों पर कोई भरोसा करेगा क्या?
उधर कांग्रेस ने भी तुरंत प्रेस वार्ता कर भाजपा के घोषणा पत्र पर हमला बोला। कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने उसे एक छलावा बताया।
न महंगाई का कोई सलूशन दिया है, न नौकरी का कोई सलूशन दिया है, न महिला सम्मान पे बात करी है, न बात करी है किसान की, न बात करी है युवा की, न बात करी है चीन के अतिक्रमण की, और आंखें मूंद ली है जो शहादत हो रही है जम्मू कश्मीर में, और उसकी जगह बरगलाया जा रहा है। इस मैनिफेस्टो को देखकर लोग हाथ जोड़कर बोल रहे हैं, हो गया बस, बहुत हो गया प्रभु, 10 साल आपको मौका देकर देख लिया, जुमलों के अलावा हमें कुछ नहीं मिला, और अब आपको बदलकर एक ऐसी सरकार लाएंगे जो युवाओं के बारे में, महिलाओं के बारे में, किसानों के बारे में, उन लोगों के बारे में जो समाज के हाशिए पर है, श्रमिकों के बारे में, उनकी सोच, उनके न्याय की बात।
कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ट्वीट के माध्यम से भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा के मैनिफेस्टो और नरेंद्र मोदी के भाषण से 2 शब्द गायब हैं, महंगाई और बेरोजगारी। लोगों के जीवन से जुड़े सबसे अहम मुद्दों पर भाजपा चर्चा तक नहीं करना चाहती। इंडिया का प्लान बिल्कुल स्पष्ट है, 30 लाख पदों पर भर्ती और हर शिक्षित युवा को 1 लाख की पक्की नौकरी। राहुल गांधी के अलावा कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और प्रियंका गांधी वाड्रा ने चुनाव प्रचार की कमान संभाल रखी है। श्रीमती वाड्रा सधी हुई भाषा में भाजपा पर हमला बोल रही हैं।
मेरी बहनें यहाँ बैठी हैं। सबसे बड़ी आपकी समस्या आज क्या है? महंगाई है, मुझे लगता है कि कुछ हो गया है मोदी जी को, समझ नहीं पा रहे हैं। क्या होता है ना, कई बार इतनी सत्ता हो जाती है कि लोग सच्चाई बताते ही नहीं है, घिर जाता है इंसान, चाहे उसके संघर्ष की कुछ भी उसका अनुभव होता है, लेकिन जब सत्ता इतनी हो जाती है लोग डरते हैं, अधिकारी डरते हैं, जो साथ में काम करते हैं वो डरते हैं कि असलियत ना बताएं, तो वो इंसान कट जाता है जनता से। तो मुझे सचमुच लगता है कि मोदी जी कट चुके हैं देश की जनता से। कैसी कैसी बातें कर रहे हैं, जब आपकी समस्याएं सीधी सीधी महंगाई बेरोजगारी सबसे बड़ी समस्याएं।
चुनाव से ठीक पहले क्षत्रिय समाज की नाराजगी ने भाजपा की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। उत्तर प्रदेश के बाद अब राजस्थान और गुजरात में भी बड़ी संख्या में राजपूत समाज के लोग भाजपा को सत्ता से उतारने की कसमें खा रहे हैं। उनकी नाराजगी भारतीय जनता पार्टी के सांसद पुरुषोत्तम रूपाला के विवादित बयान को लेकर है। इसके अलावा वे भाजपा से क्षत्रिय समाज को कम सीटें दिए जाने पर भी नाराज हैं। श्री रूपाला द्वारा कई बार माफी मांगने और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और राजनाथ सिंह सरीखे बड़े क्षेत्रीय नेताओं के समझाने के बावजूद उनकी नाराजगी कम होने में नहीं आ रही है।
हमें किसी भी ऐसे व्यक्ति के बहकावे में नहीं आना है जिससे हमारा राष्ट्र धर्म खतरे में आए। याद रखना, इस देश के राष्ट्र धर्म को हमेशा खतरा जब भी आया है इन्हीं लोगों के कारण आया है, जिन्होंने जातीयता के आधार पर समाज के सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न किया है, हमेशा छिन्न भिन्न किया है।
इस बीच भाजपा के अयोध्या से मौजूदा सांसद लल्लू सिंह के संविधान बदलने के विवादित वीडियो ने भाजपा को बैकफुट पर ला दिया है।
सरकार को 272 जो बन जाते हैं, लेकिन 272 की सरकार संविधान में संशोधन नहीं करते, उसके लिए 2/3 बहुमत से अधिक चीज या नया संविधान बनाना, तो इसलिए
चुनाव के वक्त उठे इस नाजुक मामले को प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी चुनावी सभा में भारतीय संविधान की तारीफ कर संभालने की कोशिश की।
ये बाबा साहब का संविधान है जिसके कारण आज देश की राष्ट्रपति एक आदिवासी परिवार की बेटी है, जिस समाज को सबसे अंत में पूछा गया, जिसको वंचित रखा गया, उस समाज की बेटी आज देश की राष्ट्रपति के रूप में पहली नागरिक है।
कांग्रेस ने भाजपा में मौजूद इस विरोधाभास को लेकर कटाक्ष किया है।
सबसे पहले अनंत हेगड़े, फिर ज्योति मिर्धा और फिर लल्लू सिंह, तीन लोग अपनी मंशा, संघ की मंशा, मोदी जी की मंशा आपके सामने रख चुके हैं कि संविधान को बदलना है। अब मोदी जी उनको दिल से माफ कर पाएंगे या नहीं, ये तो मोदी जी से पूछिए आप, लेकिन ये मंशा मोदी जी की है। मुंह किसी का हो, जबान किसी की हो, मंशा मोदी जी की है, मंशा नागपुर की है। इनको बाबा साहब अंबेडकर के संविधान से आज से नहीं परेशानी है, इनको शुरू से परेशानी है। इन लोगों पर आरोप झूठा नहीं लगा कि इन्होंने संविधान की प्रतियां जलाई। आज बाबा साहब की जयंती भी है और आज ही सुबह हमने ये वीडियो देखा जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, लल्लू सिंह जी जो अयोध्या के सांसद हैं और अभी प्रत्याशी भी हैं। आप सोचिए कि इनके मन में क्या है और मुंह पे क्या है, उसका अंतर आपको दिख रहा है।
तेज तर्रार युवा नेता कन्हैया कुमार को टिकट दिए जाने से दिल्ली में चुनाव दिलचस्प हो गया है। वे उत्तर पूर्वी दिल्ली से भाजपा उम्मीदवार भोजपुरी अभिनेता गायक मनोज तिवारी के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे। दिल्ली में भाजपा के खिलाफ आम आदमी पार्टी 4 सीटों पर और कांग्रेस 3 सीटों पर मिलकर चुनाव लड़ रही हैं। तो ये थे अब तक के समाचार। नमस्कार।